उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। सरकार गठन के बाद गुरुवार को हुई पहली कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बारे में बताते हैं।
एक कमेटी का हम गठन करेंगे, एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाएंगे। वो कमेटी यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी और हमारी सरकार उसको लागू करेगी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में भी राज्य सरकारों के लिए इसका प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकारें अपने प्रदेश में इस प्रकार की व्यवस्था को लागू कर सकती हैं और केंद्र को प्रस्ताव भेज सकती हैं। साथ ही बीच बीच में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा भी इस पर लगातार नाराजगी व्यक्त की गई थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं हो पा रहा है, इसलिए हमने तय किया, आज मंत्रिमंडल ने हमने तय किया कि हम जल्द से जल्द इसको लागू करेंगे। और आज मंत्रिमंडल ने हमने सर्वसम्मति से प्रस्ताव ये पारित कर दिया है कि इसका ड्राफ्ट करने के लिए जल्दी ही हम कमेटी का गठन कर देंगे और उत्तराखंड के अंदर ये लागू होगा।
सरकार का मानना है कि राज्य में ऐसे कानून की जरूरत है जो सभी के लिए समान हो। गोवा के बाद उत्तराखंड देश का दूसरा राज्य होगा जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने जा रहा है। उत्तराखंड के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में आज योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुरुवार को लखनऊ में भाजपा विधायक दल की बैठक में योगी आदित्यनाथ को नेता चुना गया। नेता चुने जाने के बाद योगी आदित्यनाथ ने जनता के प्रति अपनी वचनबद्धता को दोहराते हुए कहा,
जो अपेक्षाएं उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की है, उन अपेक्षाओं पर उन आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए हम सबको प्राणपण से जुटकर के काम करना होगा, मिलकर के कार्य करना होगा, एक टीम वर्क के रूप में काम करना होगा, मिलकर के एक सेवक के रूप में। एक देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही कि हमारी भूमिका एक सेवक की होनी चाहिए, हम शासन में आते हैं मालिक बनने की भूल कभी न करें, एक सेवक के रूप में बहुत है, हम उस व्यवस्था के कस्टोडियन के रूप में हमारी भूमिका होनी चाहिए। और इन सभी को जब हम आगे लेकर के चलते हैं तो स्वाभाविक रूप से हम सबके सामने प्रतिस्पर्धा, पहले कुशासन से सुशासन के लिए था, अब सुशासन को और भी सुदृढ़ करने के समय अगला हमारा कदम क्या होना चाहिए, स्वयं से हमारी प्रतिस्पर्धा प्रारंभ होगी।
और अब चर्चा पश्चिम बंगाल की, जहां बीरभूम हिंसा को लेकर राजनीतिक माहौल गर्माया हुआ है। बीरभूम में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस से जुड़े एक नेता की हत्या के बाद 8 लोगों को जिंदा जला दिया गया था। कोलकाता हाईकोर्ट ने मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई की है। आज अदालत इस पर अपना कोई आदेश जारी कर सकती है। राज्य सरकार ने मामले की केस डायरी और SIT द्वारा की गई जांच रिपोर्ट को अदालत के सामने पेश कर दिया है। इधर इस मामले को लेकर भाजपा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर लगातार हमला बोल रही है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ममता बनर्जी को निर्मम दीदी की संज्ञा देते हुए कहते हैं,
कोर्ट ने भी इसका संज्ञान लिया है और कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। कल हमने न्यूज चैनलों के माध्यम से देखा कि जो चश्मदीद गवाह है वो भी गायब है, द आई विटनेस इज नॉट टू बी फाउंड, उस पर भी FIR किए गए हैं। कोर्ट ने भी ममता बनर्जी और उनके सरकार को यह हिदायत दिया है कि जो चश्मदीद गवाह हैं उनकी प्रोटेक्शन की जाए। मेरा तो रूह कांप उठ रहा है यह सोचते हुए कि सरकार में जिस प्रकार की रिवेंज किलिंग चल रही है बंगाल में, चश्मदीद गवाह के साथ भी ऐसा कुछ न कर बैठे ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के लोग। ये कोर्ट कह रही है। ममता बनर्जी ने यह भी कहा है, कल बड़े अहंकार से उन्होंने कहा कि यह बंगाल है, यह यूपी नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा ममता बनर्जी आपने, निर्मम दी, आपके अंडर में, आपके मुख्यमंत्रित्व के काल में जिस बंगाल में आप बात कर रही हैं ना, उस बंगाल में जिस प्रकार की हत्याएं हुई हैं वो उत्तर प्रदेश में सोचा भी नहीं जा सकता।
ममता बनर्जी गुरुवार को एक्शन में नजर आईं। इसके बाद आरोपियों और अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि भाजपा इस पर राजनीति कर रही है, जिसके कारण स्थिति बिगड़ रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर का कहना है कि भारत की विदेश नीति लोगों के हितों को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। गुरुवार को एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एस जयशंकर ने विदेश नीति को परिभाषित करते हुए कहा,
फॉरेन पॉलिसी मैटर्स नॉट जस्ट इन डिस्ट्रेस सिचुएशंस, इट कुड लिटरली डिटरमिन योर सिक्योरिटी, योर जॉब, द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ एंड एज वी हैव डिस्कवर्ड रिसेंटली इवन योर हेल्थ। इट शेप्स व्हाट यू होल्ड डियर लाइक प्राइड, values, reputation and image. And for all these reasons and more, it is important that you take a greater interest in the world. Now, let me explore what foreign policy could mean for you personally. As an Indian student, for example, it may be the ease of getting visas, the ability to travel during times of COVID, and perhaps even employment after studies. If you are a business person, it could help access to foreign markets, receiving information about regulations and practices, and where circumstances demand, assistance to solve problems.
चीन के विदेश मंत्री इस समय भारत में हैं। गुरुवार को वे नई दिल्ली पहुंचे। आज भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ उनकी मुलाकात हो रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल के साथ भी वांग यी की मुलाकात होनी है। चीनी विदेश मंत्री ने हाल ही में इस्लामाबाद में संपन्न हुई ओआईसी की बैठक में कश्मीर को लेकर बयान दिया था, जिस पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई थी। कश्मीर विवाद के अलावा लद्दाख सीमा विवाद और गलवान संघर्ष का साया भी नेताओं की बातचीत पर पड़ सकता है। भारत से आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं विश्व रत्न SBS रेडियो की हिंदी सेवा के लिए